करेंगे, देर तो नहीं हुई, चार बजे का क्लास मिस किया था, आठ बजे जा रहे हैं, चलेगा
जन्म
दुई माने दो जन्म माने जन्म ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है कि ब्राह्मण का जब जन्म होता है पेट से, बच्चा पेट से जन्म लेता है, गर्भ से जन्म लेता है, तो उसको पक्का ब्राह्मण नहीं माना जाता है। क्या उसको द्विज नहीं कहते, द्विज माने ब्राह्मण, द्विज तब कहा जाता है जब उसका यज्ञोपवीत होता है। क्या यज्ञों का भी जब होता है तो कहते हैं आप पक्का ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है वो बच्चे की शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक उसका यज्ञों का भी न हो, तो उसको कहते हैं द्विज। ये कहां से परंपरा चली, यहां संगम युग से, संगम युग में जब बाप आते हैं तो ब्राह्मण बच्चों ने जन्म लिया, ब्रह्मा से जन्म लिया, ब्राह्मण हुए, प्रजापिता ब्रह्मा से जन्म लिया, वो भी क्या हुए, ब्राह्मण हुए। लेकिन जब तक यज्ञोपवीत न धारण करें तब तक ब्राह्मण नहीं कहे जा सकते। यज्ञोपवीत माना क्या, तीन धागे, एक है ब्रह्मा की स्मृति का धागा, ब्रह्मा की पहचान, ब्रह्मा कौन, ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा कौन और उसका क्या पार्ट है, फिर विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन और शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन, ये पक्का पक्का बुद्धि में बैठ गया। कोई पूछे कैसे तो उसका भी जवाब दो, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, अब ये शंकर, ये तीन सूत्रों को जो बुद्धि में अच्छी तरह धारण कर ले उसको कहा जाता है यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण, द्विजन्म, दूसरा जन्म। जैसे सतयुग के कृष्ण का गायन है या संगम युग के कृष्ण का गायन है, संगम युग कृष्ण का गायन है, तो संगम युग में जो कृष्ण है वो कौन व्यक्तित्व तो है जो संगम युगी कृष्ण का पाठ बजाता है, बोला नेक्स्ट गॉड इज शंकर, नेक्स्ट गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट गॉड इज नारायण और नेक्स्ट गॉड इज कृष्ण, माना कृष्ण नारायण प्रजापिता ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है, पर्सनालिटी एक ही है, तो शंकर को भी जनेऊ धारण करके दिखाते हैं। शंकर का जो चित्र होता है उसमें यज्ञों पर भी दिखाते ही नहीं, तो संपूर्ण ब्रह्मा का रूप है। जब तीनों मूर्तियों का पक्का पक्का ज्ञान बुद्धि में बैठे,
जैसे बाबा आदि ब्रह्मा पात्रधारी आत्मा कौन है,
ब्रह्मा दादा लेख रहा है तो उसे भी छोड़ दिया, लेकिन मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, रियलिटी में जगदम्बा कौन है, ये ब्रह्मा दाढ़ी मूंछ वाला ये तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष है, पक लगा दी, परंतु लगा हुआ था, इसलिए पक्की जगदम्बा नहीं कही जा सकती। तन पुरुष का है तो पुरुष तनधारी कन्या माताओं को चार्ज में कैसे रखा जाए, इसलिए ओम राधे को निमित्त बनाइए। कब तक के लिए? जब तक वो जगदम्बा जन्म न ले सके। क्या? तो सन 65 में ही सरस्वती ने भी शरीर छोड़ा और सन 65 में ही जो जगदम्बा है सच्ची पैर प्रत्यक्ष होने वाली है, जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके पाठ बजाती है जगदम्बा का, वो भी साकार जन्म लेते। उधर ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ा जो कन्या माताओं संभाल करने वाली थी, और इधर साकार वो जगदम्बा जो यज्ञ के याद में थी, जिसके मुख से साक्षात्कारों को सुनाया गया प्रजापिता को, तो प्रजापिता पहला ब्राह्मण बन गया। पहला ब्राह्मण किसका बना? किस आधार पर बना? किसी के मुख से सुना होगा तभी तो ब्राह्मण बना। ब्रह्मा मुख की औलाद ही तो ब्राह्मण कहा जाता है। तो प्रजापिता किस कौन से ब्रह्मा की औलाद? वो माता जो है कि आदमी थी जिसके मुख से सुना, वही पहली माता, वही माता फिर संसार से जन्म ले लेती, मम्मा से छोड़ देती। तो वो बड़ी हो जाए तब उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश, फिर वो जन्म का पालन। जब माता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो, आदि में है दुर्गा के रूप और अंत में है उसका महाकाली का रूप। ब्रह्मा का आदि सात्विक स्टेज का रूप है दुर्गा, दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा, और अंत का पार्ट है महाकाली का। क्योंकि देवियों के ऊपर ये जिम्मेवारी रखी गई है खास। क्या? ब्रह्मा द्वारा इसका गेट खोलता हो, सरसर गेट खोलता हो, माताओं के द्वारा गेट खोला जाता है, पुरुषों के द्वारा गेट नहीं खोला जाता। क्यों? सब पुरुष जो है वो प्योरिटी के मामले में डब्बा बोल, अन्याय माताएं अगर अपने पर आ जाए, अपनी पर आ जाए, हिम्मत करें, तो वो नई दुनिया की स्थापना में परमात्मा की सबसे ज्यादा सहयोगी बन सकती है। तो उनमें जगदम्बा का नाम है, और जगदम्बा इतनी पावरफुल भी है कि अगर कोई ना माने, क्या पहली पहली रचना है ना इसकी, गॉड फादर रचयिता बाप की पहली रचना है, तो ज्यादा पावरफुल होगी कि नहीं? इतनी पावरफुल है कि अगर ना माने ब्राह्मण, ब्राह्मण तो दो तरह के होते हैं, अच्छे ब्राह्मण और ब्राह्मण को मुकाम मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, संख्या किनकी ज्यादा होती है? पूरे ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा होती है राक्षसी ब्राह्मणों की। तो अगर नहीं मानते हैं तो फिर वो महाकाली का रूप धारण करते हैं और सब आसुरी ब्राह्मणों का पत्ता साफ करती है, संगार करती है, क्या कोई तलवार से काट देती है? नहीं, अनिश्चय बुद्धि ऐसा पार्ट बजाती है कि सारे ही के सारे आसुरी ब्राह्मण क्या बन जाते हैं? अनिश्चय बुद्धि मरंती, मर जाते हैं, मर गए मन खलास, जब मरे गए तो पद क्या पाएंगे? तो शक्तियों को ये काम मिला हुआ है, क्या? असुर संहारिणी, ब्रह्मा का काम नहीं है असुरों की संहार करना। शंकर का नाम कहा जाता है, क्या? शंकर द्वारा विनाश, लेकिन शंकर विनाश करता नहीं है, क्या डमरू लेके और डांस करने से भी ना सो जाता है क्या? अरे नाचने से विनाश हो जाएगा क्या? विनाश करने के लिए तो पावरफुल आत्मा चाहिए, ऐसी पावरफुल विनाश कैसे होता है? विनाश प्योरिटी से होता है या इम्प्योरिटी से होता है? इम्प्योरिटी से. विनाश पवित्रता से होता है या पवित्रता से विनाश होता है? इम्प्योरिटी से विनाश होता. दुनिया में जैसे जैसे इम्प्योरिटी बढ़ती जा रही है, दुनिया गड्ढे में गिरती जा रही है. तो ये इम्प्योरिटी का जो काम है वो असुर संहारी के द्वारा महाकाली के रूप में गाया. इसलिए देवी के दो रूप हैं, एक रूप है शाकाहारी वैष्णवी देवी लक्ष्मी भारत माता, और दूसरा रूप है मांसाहारी. महाकाली के मंदिर में क्या चढ़ाया जाता है? मांस है, पाट पाट के ढेर मांस अच्छी तरह से खाती है, चबा चबा. इस शक्ति में से देवहन का संपूर्ण संपूर्ण नाश हो.
अष्टदेव का संगठन तैयार होने के बाद विजय का पाठ खत्म हो
जाएगा. टीचर का पाठ खत्म हो जाएगा. अब जब आठ आठ टीचर तैयार हो गए तो एक टीचर को रिटायरमेंट नहीं देंगे? नहीं, जब आठ आठ टीचर तैयार हो गए, बाप समाज स्टेज को धारण कर लिया, तो जो बड़ा टीचर है वो आराम की कुर्सी पर नहीं बैठेगा? बैठेगा फिर क्या? सतयुग का पाठ, सदगुरु का पाठ तो ठीक है. सदगुरु भी जो है वो संगति करने वाला है, तो वो सदगति कैसे करेगा? कब बोल बोल के सदगति करेगा क्या? दृष्टि से शक्ति सुधरती है. इसलिए मुरली ने बोला ऐसी तीखी दृष्टि देगी जो तुम बच्चे सहन नहीं कर सकते.
देवालय में मूल विराट कौन है, उच्च विग्रह कौन है, ये दोनों अलग अलग है एक ही
मंदिर में है. जो मूर्ति रखी जाती है तो बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं वो तो उत्सव मूर्ति कहते हैं उसको, और जो मूल विराट होता है दोनों में अंतर है या एक ही?
मंदिर में एक अंदर एक बड़ा मूर्ति
रखी होती है
और एक छोटा मूर्ति रखता है, वो बाहर घूमता है और वो कोई बाहर में ले जाता है.
छोटी मूर्ति को रथ में रख करके घुमाने ले जाते हैं.
घुमाने ले जाते दोनों में क्या फर्क है?
मूर्ति जो है वो एक जो अंदर रखी हुई है वो मूर्ति, और जिसकी पूजा होती है वो मूर्ति, और जो परिक्रमा लगाई जाती है जिस मूर्ति की, वो अंतर ये है दिखाया छोटे बड़े का कि अंदर जो स्थायी रूप में रखी हुई है वो संपन्न हो चुकी है, उसको धक्के खाने की दरकार नहीं. और जो चक्कर काट रही है सर, छोटा पुरुषार्थ है, अभी बड़ा होने वाला है. जब पूरा पुरुषार्थ हो जाए तो हमेशा चक्कर काटते हुए दिखाया गया ना, तो जरूर संगम युग में चक्कर काटा होगा उस मूर्ति में. क्या जगन्नाथ की मूर्ति को चक्कर कटाते हैं ना, तो चक्कर काटने का मतलब ईश्वरीय सेवा का चक्कर काटा होगा या ऐसे ही चक्कर काटता रहा होगा, घूमता फिरता रहता होगा? भूल भूल तो वो घूमता फिरता, तो भूतों का काम, भूतों का काम करने के लिए नहीं. लेकिन जो छोटी मूर्ति दिखाई जाती है माने पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ है. जितना बड़प्पन का पुरुषार्थ होना चाहिए वो पूरा नहीं हुआ है, तब तक चक्कर काटते. जब चक्कर पूरा हो जाएगा तो संपन्न मूर्ति बन जाती है, बड़ी मूर्ति मंदिर रखी हुई दिखाई.
और
कुबेर कौन है?
बहुत धन संपत्ति वाला है, उससे ज्यादा धन संपत्ति वाला कोई है ही नहीं। मास्टर देव में उसे एक का नाम कुबेर है। क्या है धन संपत्ति? दूसरों को बांटने के लिए होती है। धन संपत्ति दूसरों को बांटने के लिए होती है या घर के अंदर रखने के लिए होती है? हाँ, तो जो धन संपत्ति है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, उस ईश्वरीय ज्ञान को बांटने का सबसे जास्ती प्रबंध किसने किया होगा? कुबेर। कुमार का दादी ने इतना प्रबंध नहीं किया, जगदीश भाई ने ये प्रबंध नहीं किया, किसने किया? ना
ब्रह्मा बाबा ने कहा।
ब्रह्मा बाबा तो खुद ही ज्ञान को नहीं समझे, जब ज्ञान को खुद समझे ही नहीं तो दूसरों को बांटेंगे क्या? पहले तो सुनने सुनाने से ज्ञान पूरा हो जाता है क्या? ज्ञान को सुन लिया, दूसरों को सुना दिया, श्लोक रट लिया, रटा हुआ श्लोक दूसरों को सुना दिया, तो उससे ज्ञान पूरा हो जाएगा नहीं? पहले समझना और समझ करके फिर दूसरों को समझाना और चारों तरफ दुनिया में वो ज्ञान बांटने का प्रबंध करना। तो कुबेर ने ये काम संपन्न किया। न सरस्वती के द्वारा वो कार्य संपन्न हुआ, न ब्रह्मा के द्वारा वो कार्य संपन्न हुआ और न जगदम्बा के द्वारा वो काम संपन्न हुआ। इसके द्वारा संपन्न हुआ नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा भी कहाँ हुआ? कुबेर के द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा का तो आसदेवों में ईश्वर के रूप में गायन है, शंकर के रूप में। ईशान कोण में अष्टदेवों में जो शंकर है वो बैठा हुआ है। किस दिशा से उदित होता है? ईशान कोण से उदित होता है। तो ईशान कोण जो है वो भारतवर्ष के किस किस तरफ है? बंगाल नेपाल का बीच का प्रदेश है, बीच की जो दिशा है ना वो ईशान कोण। ईशान कोण में ईश्वर को दिखाया है, उसका नाम ईश्वर रखा है, चित्र रख दिया है शंकर जी का। तो वो तो ऊंचे से ऊंचा महादेव है, वो देवता नहीं है, वो क्या है?
महादेव।
सब अष्टदेवों में भी सबसे बड़ा देवता है, लेकिन जिसका नाम कुबेर है, बहुत धन संपत्ति वाला है।
सुंदर में नहीं रहता,
मंदिर में
दक्षिण भारत में आठों देवताओं के चित्र दिखाए गए, उत्तर भारत में वो चित्र नहीं मिलते क्या? हाँ, उनमें उत्तर साइड में, दक्षिण साइड में, पूर्व साइड में, पश्चिम साइड में और उनके कोनों में ये आठ देवता दिखाई जाते हैं। तो कुबेर है वो धन संपत्ति का स्वामी दिखाया गया, ऐसे ही स्वामी दिखा दिया जाएगा कि दान किया होगा तब स्वामी के दिखाया जाएगा? तो उस धन को, धन संपत्ति को दान करने का प्रबंध किया, बांटे जाओ, बांटे जाओ, खूब बांटो।
आत्मपरिवर्तन का सहज हिंदी क्या है? आत्मपरिवर्तन का सहज हिंदी क्या
है?
आत्मपरिवर्तन का सबसे सहज विधि है बिंदी आत्मा याद करो, स्टार भूलो पर। इससे सहज विधि और क्या हो? दूसरे को देखो तो नाक मत देखो, मुंह मत देखो, पेट मत देखो, क्या देखो? स्टार देखो। अपने अंदर भी स्टार देखना और दूसरों के अंदर भी मृत्यु में स्टार देखना, सबसे विधि सहज है। सुबह से लेकर के शाम तक तांत लगी रहे क्या स्टार को देखो? सुबह उठते ही उठते पक्का फाउंडेशन डाल दो, फाउंडेशन पक्का होगा तो बिल्डिंग पक्की होगी, ऊंचे से ऊंची बिल्डिंग बना लो। फाउंडेशन अगर कच्चा है तो बिल्डिंग भी कच्ची होगी। तो सवेरे सवेरे का वेला फाउंडेशन वेला है, जैसे ही उठो कुछ याद ना आए, क्या याद आए सबसे पहले मैं आत्मा इसका बैठ जाते हैं। कठिन है क्या
कठिन वहां ना सुन
काम कठिन है बैठे रहो अरे हम आत्मा है कि देह है, जो चीज हम है उस चीज को याद कर सकते। 63 दिन हम बिंदी लगाते चले आए, टीका लगाते चले आए, अब टिकने की बारी आई है, उस स्वरूप में स्मृति स्वरूप बनने की बारी आई है, सिर्फ एक जन्म, तो प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अब बूढ़े आदमी को तो आओ सहज कोई धंधा ही नहीं है, क्या वानप्रस्थी हो गए, दुनियादारी से पीछा छूटा, बस एक ही काम रह गया पुरुषार्थ, देह के लिए जो कुछ करना था धरना था सब कर लिया। बहुत से वानप्रस्थियों के लिए तो बहुत से है, कोई धंधा दौरी नहीं, एक ही धंधा रह गया अपन को आत्मा समझना और बाप को किया। हाँ ये बात जरूर है कि हाव हाव करते रहे, ये भी मेरा वो भी मेरा, इस बच्चे ने जो कमाया वो भी मेरी हाथ में लाओ बैंक में डालो, तो आत्मा याद नहीं, याद आने वाली नहीं, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, देह मेरी नहीं, देह के संबंध मेरे नहीं, देह के पदार्थ भी मेरे नहीं, सब अर्पण कर दिया। तो सब कुछ जब अर्पण कर देंगे ईश्वरीय सेवा में दे देंगे, पक्का कर लेंगे या मुझे अपने लिए यूज कुछ भी नहीं करना है, अपने लिए बस दो रोटी पाव पराठा का भी पाव पराठा आदमी को मिलता रहे तो जिंदा बना रहेगा या नहीं, भगवान को याद कर सकता है नहीं कर सकता है, कर सकता है, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये पक्का कर दिया तो नहीं याद आएगी, सबसे सहज प्रसाद है। और तो कन्वर्ट कर लिया ना उसे, जब प्रवेश किया प्रवेश करते ही कन्वर्ट कर लिया उसे, क्राइस्ट वाली आत्मा आई और जिसे मैं प्रवेश किया उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। जैसे पति होता है तो पत्नी को कंट्रोल में रखता है कि नहीं, पति क्या करता है पत्नी को अपने मुट्ठी में ले लिया, तो ऐसे ही वो ऊपर से आने वाला धर्म पिता है वो जिसे मैं प्रवेश करता है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। दोनों की अगला जन्म मिलेगा दोनों अलग अलग, वो अपने धर्म में राजा ही करेगा, वो नहीं राजा ही करेगा, उसको राजा ही थोड़ी देते हैं, अम्मा को राजा ही मिलती है क्या, तो आज ही बना दिया रहेगा, वो क्या बीज रूप आप बन गए बीज है बाप। और
छत्तीस करोड़ की देवता कौन है?
छत्तीस नहीं, तैतीस करोड़।
तैतीस करोड़ की देवता कौन
है? कौन है का मतलब एक एक का अलग अलग नाम बताया जाए।
सची को आदि से कली का अंत बना पे बाबा।
सचिव आदि से लेकर के कलयुग अंत तक आत्माएं उतरती रहती और सब धर्म की आत्माएं उतरती है। ऐसे नहीं कि कोई धर्म की उतरना बंद हो जाती है, नहीं, हर धर्म की आत्माएं कलयुग अंत तक उतरती है। उनमें 33 करोड़ देवताएं भी वो धीरे धीरे उतरते रहे, वो उतरते हैं और उनमें जो दूसरे आने वाले हैं वो उतरने के बाद जब वो जन्म लेते हैं बड़ा शरीर बनता है तो उनमें वो प्रवेश करते हैं। माने 33 करोड़ देवात्माओं में जो भी दूसरे धर्म के क्राइस्ट आदि हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, इब्राहिम आदि हैं उनके फॉलोअर्स हैं, वो प्रवेश करते हैं। दूसरों में प्रवेश नहीं करेंगे। जो देवता धर्म की आत्माएं हैं पुराने की पुरानी उन्हीं में प्रवेश।
शरीर
समय में
भगवान याद
आता है। सारी जिंदगी जो ज्यादा याद किया होगा वो यत्न में आता है।
देवता तो ये
हर जन्म की आदत पड़ी हुई, हर जन्म में हर जन्म में स्त्री पति को याद करती है। सारा जीवन में सबसे जास्ती किसकी याद आती है?
पति
की याद आती है। तो अंत समय में जब शरीर छोड़ती है तो किसकी याद आ जाएगी?
पति
की याद आ जाएगी। तो क्या बनेगी? पति का शरीर याद किया तो क्या बनेगी? पुरुष कर मिल जाता है। ऐसे ही पुरुष जो है सारा जीवन किसको याद करता है? काम विकार प्रधान होता है तो स्त्री को याद करता है। स्त्री का चोला सारा जिंदगी याद किया तो उस समय में कौन याद आ जाएगा? वो स्त्री चोला याद आ जाता है तो स्त्री का जन्म मिल जाता है।
तो एडवांस में आने के बाद सर्व संबंध एक बाप से रखने से पाप अंत में आ
जाए। कोई कहीं नहीं, हम तो जगदम्बा को याद करें
तो पाप तो कठिनपड़ो सुलभ वेरे संबंध वाकं काबी सर्व संबंधते
जगदम्बा को याद करें तो जगदम्बा को याद करने से दुर्गति होगी या सदगति होगी?
दुर्गति
है। अच्छा अगर हम जगदम्बा को याद नहीं करें, हम लक्ष्मी को याद करें
तो कौन पसंद में बाबा क्लास करते हैं वो सीढ़ी लाए
पत्रों का वो बाबा ने क्लास किया
बाबा का क्लास
हाँ
वो सीढ़ी लाए
हाँ
सोमवार
डाले हाँ तो
एक एक
टीचर बनाया
आने वाली लक्ष्मी को
आने वाली लक्ष्मी को याद किया। जैसे जैसे भी याद करोगे वैसी गति बनेगी। एक को याद करेंगे
एक
लक्ष्मी बनने वाली आत्मा है ना।
हाँ लेकिन अधीन बनने वाली आत्मा है ये अधिकारी राजा बनने वाली आत्मा है। तो क्या बनोगे? अधीन बनोगे जब निर्माण तक या राजा बनोगे?
देखने में उनका
आने याद आह्वान करना बात अलग है लेकिन याद करना
याद नहीं
वो ठीक नहीं है।
बाबा मुरली में बोला है मैं 84 जन्म के अंत के भी अंत में मैं आता हूँ, लेकिन प्रजापिता का जन्म 83 है ना?
83 जन्म है? किसने कहा?
जन्म
बहुत जन्मों के अंत में, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। तो बहुत जन्म कितने हुए?
83।
बहुत जन्म 84 कहेंगे या बहुत जन्म 83 कहेंगे? 84 है। तो सन 36 में प्रजापिता का 84वां जन्म था या 83वां था? 76 में नहीं, 36 में, 36 में। कौन सा जन्म था? बहुत जन्म था या थोड़ा जन्म था? बहुत जन्म था। बहुत जन्म माने 84 का जन्म, बहुत जन्म था वो। लेकिन बहुत जन्म में 60 साल ही हुआ, 60-70 साल ही हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए वो पूरा होना है। तो 60 साल जो आयु है वो ब्रह्मा की नहीं गाई जाती, कितनी गाई जाती है? 100 साल गाई जाती। उसने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया शुरुआत में, तो वो जो टाइम बचा है वो ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड होता है जाके तब 100 साल पूरे होते हैं। 76 में, 76 में वो 100 साल पूरे हुए तो वो उनका 84 जन्म पूरा, 84वां जन्म पूरा हुआ। फिर 85वां जन्म नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म संगम युग। वो 84वां जन्म भी है क्योंकि शरीर तो 84वां क्या 85वां नया जन्म नहीं लिया संगम युग। तो जो नया जन्म लिया क्या 85वें बाप से लिया या 84वें बाप से लिया?
निरंतर योग काम
अभी एक बात चल रही है ना यहाँ, वो नहीं सुन रहे? जो बात चल रही वहां तक बुद्धि पहुंचा हो। माता का कहना ये है कि सन 36 में जो प्रजापिता में शिव ने प्रवेश किया वो 84वां जन्म था या 85वां जन्म था? बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो अंत का भी अंत कब पूरा हुआ? है? हाँ? 76 में जाकर के 84वां जन्म पूरा हुआ। फिर एक्स्ट्रा आर्डिनरी जन्म शुरू हो गया क्योंकि शरीर वही है, संगम है एक ही शरीर में दोनों। तो जो 76 से जो शुरू हुआ वो बुद्धि का रिफॉर्मेशन शुरू हुआ, बुद्धि का रिजुविनेशन शुरू हुआ या शरीर का रिजुविनेशन शुरू हुआ? बुद्धि का रिजुविनेशन शुरू हुआ। पहले बुद्धि रिजुविनेट हो, फिर जब बुद्धि रिजुविनेट हो जाए, बुद्धि संपूर्ण पवित्र बन जाए, तब फिर बुद्धि के चारों तरफ की आत्मा के वाइब्रेशन, दृष्टि के और वृत्ति के शुद्ध होना शुरू हो। जब वाइब्रेशन चारों तरफ के शुरू होंगे अच्छे, तब शरीर के पांच तत्व भी शुद्ध हो, निरोगी काया बन जाए। टाइम आता है जब संगम जी कृष्ण की प्रत्यक्षता गाई जाती है, द्विजन्म, दूसरा जन्म, पहला जन्म और फिर दूसरा जन्म, तब कहेंगे कि वास्तव में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म वो पूरा। काली कलकत्ते वाली गाई जाती है। ऐसे देवी की पूजा तो उत्तर भारत में भी होती है, पंजाब में भी बहुत देवियों की पूजा होती है। ज्यादा मंदिर कहाँ बने हुए देवियों के? पंजाब में ढेर सारे मंदिर बने हुए उत्तर भारत में, लेकिन महाकाली के रूप में विशेष पूजा कहाँ गाई हुई है? कलकत्ते में। तो कलकत्ते में महाकाली के रूप में पूजा इसलिए गाई हुई है कि कलकत्ता ही एक ऐसा शहर है जहां से सृष्टि की शुरुआत का काम शुरू होता है, और कलकत्ता ही एक ऐसा शहर है जहां तमो प्रधान दुनिया में सबसे जास्ती वैश्य बनती है। इसलिए महाकाली का पाठ भी गाया हुआ कलकत्ता। क्यों? कलह के लिए सब पड़ता है दुनिया में, वैश्यालय बनता है तब पड़ता है या शिवालय में कलह कलह पड़ता है? जितना जितना वैश्यालय बढ़ता जाएगा, व्यभिचार बढ़ता जाएगा, उतना उतना कलह क्लेश बढ़ता जाएगा। ये सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होती है व्यभिचार की कौन से देश में? क्या कह रहे हैं? बैठे रहो।
निरंतर योगिक अवस्था में रहने की सारी युक्ति क्या?
अरे आदमी की स्थिति में रहोगे तो योग अभी तो पूछा। आदमी की स्थिति में रहना माना योग युक्त स्थिति का पहला कदम हमने पक्का कर दिया, फाउंडेशन पक्का हो गया तो योगिक अवस्था बनी जाएगी। ऐसे कोई न समझे कि हम आत्मा को याद न करें और बाप याद आने लगे। पहली शर्त क्या है? अपन को आत्मा समझ, पहला फाउंडेशन पक्का करना है, फिर बाप सहज याद आएगा अपने आप। जहां आत्मा है वहां परमात्मा बाप तो है ही है, बच्चे से बाप जुदा नहीं हो सकता। बाप पढ़ाने ही किसको आता है? अपने बच्चों को पढ़ाते, देवानियों को पढ़ाने आता है कि आत्मा को पढ़ाने आता है? जो आत्मा बनते हैं उन्हें को ही पढ़ाई पढ़ाता है, इसलिए आत्मा बनने वालों को सहज हो जाता है, जो देवान में रहते उनको सहज नहीं है। ठीक है, जरूर मिलता है।
200 करोड़ आत्मा को जीवन मुक्ति मिलता है या नहीं?
नहीं, जीवन मुक्ति एक जन्म की है। 200 करोड़ जब कहेंगे, 200 करोड़ नहीं कहो, 2 करोड़ कहो। 2 करोड़ को तो 21 जन्म की मिलती
है।
700 करोड़ तो 500 निकाल दिया, जो 200 करोड़ है सारे उनकी मुक्ति जीवन मुक्ति क्या, वो तो कीड़े मकोड़े की तरह है, आए और एक जन्म लिया गए। जैसे पतंगे होते हैं ना रात में, बरसात के बाद पतंगे पैदा होते हैं, ढेर सारे पैदा हो जाते हैं, फिर एक ही रात में सवेरे को सब बड़े पड़े। ऊपर से आती है, रात से जन्म लिया, फराक से खत्म हो गए। वो तो कीड़े मकोड़े जैसे, उनको कोई अकल है?
प्रवेश नहीं चाहिए।
प्रवेश भी करेंगे, प्रवेश भी करेंगे और फिर अगला जन्म भी लेंगे। प्रवेश करेंगे तो उनको जीवन मुक्ति मिलेगी। क्या माने? 750 करोड़ भी आत्मा जो होगी, 750 करोड़ में जो लास्ट वाली आत्मा होगी वो भी पहले जन्म में शुभ होगी।
प्रवेश?
हाँ जी, प्रवेश करेंगे और फिर फटाक से जन्म छोड़ के गर्व से जन्म लेके फिर।
हाथ में है ये नशा में कैसा रहेगा? हाथ हाथ में, हाथ हाथ में है,
हाथ में हाथ हो,
ये कैसा कैसा रहेगा?
ये हाथ जो है ना, ये हाथ को पकड़ा, इस हाथ ने इस हाथ को पकड़ लिया है ना, ये हाथ तो स्थूल है और वो हाथ भी स्थूल है। हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, क्या यह डब्बा है, हाथ ने पकड़ लिया, पकड़ लिया ना, अब इस डब्बे ने इस हाथ को छोड़ भी, हाथ ने इस डब्बे को छोड़ भी दिया, तो ये बुद्धि भी हाथ का मिसाल है। भगवान की बुद्धि, बुद्धि रूपी हाथ इस सारी सृष्टि की एक एक आत्मा को पकड़ लेता है। तो हमें चाहिए कि हम अपना बुद्धि रूपी हाथ उस बाप के हाथ में दे दें, क्या वो हमारा हाथ पकड़ के ना खींच के ले जाए, लेकिन हम खुद ही अपना हाथ में हाथ दे दें, बाप के हाथ में अपना हाथ दे दें, माने अपनी बुद्धि उसको अर्पण कर दे, उसको कंट्रोल में कर दे। करेंगे कब? जब पहचानेंगे तब करेंगे या बिना पहचाने कर देंगे? जो जितना गहराई से बाप को, बाप जो है जैसा है जिस रूप में पार्ट बजाय रहा है उसको पहचानेंगे तो उसके बुद्ध रूपी हाथ में अपना हाथ बुद्ध रूपी दे देंगे, नहीं पहचानेंगे या जब पहचानेंगे तब देंगे। कोई पहले पहचान लेंगे, कोई बाद में पहचान लेंगे। जो पहले पहचान लेंगे वो पहले ही अपना हाथ अर्पण कर देंगे, तो ज्यादा फायदेमंद कौन रहेंगे? जो पहले पहचान के बाप के हाथ में हाथ दे देगा वो पद पा जाएगा, वो ज्यादा प्राप्ति कर जाएगा। जो बाद में लास्ट में अपना हाथ देंगे जब प्रकृति की मार पड़ेगी, सरकार की मार पड़ेगी, समाज की मार पड़ेगी, फिर जबरदस्ती दे दिया तो फिर ऊंचा पद।
सत्यम सेवन सुंदरम तो कौन सुंदर है?
जो सत्य है वो ही शिव है, माने कल्याण का। अगर सत्य नहीं है तो कल्याणकारी भी नहीं, और जो कल्याणकारी है वो ही सुंदर है। कोई चेहरे का बड़ा सुंदर हो लेकिन अकल्याण करने वाला हो, सत्यानाश करने वाला हो तो कल्याणकारी नहीं है। जो सत्य है वो कल्याणकारी भी है, वो ही सुंदर है, सत्य ही सुंदर है। और जो शिव है अर्थात कल्याणकारी है वो ही सुंदर है। माना चेहरे बोने से कोई कितना भी कुरूप हो लेकिन दूसरों का कल्याण करने वाला, किसी का कल्याण करने वाला नहीं है। मन से वैदेशन कल्याण के नहीं छोड़ता, दृष्टि जो है वो किसी के प्रति अकल्याण की नहीं जाती, दृष्टि कल्याण की है, भावना कल्याण की है। कर्मेंद्रियों से जो कर्म करता है वो भी दूसरों को कल्याण के लिए करता है, लेकिन चेहरे से भले गुरु को तो उसको क्या कहेंगे? शिव कहेंगे, कल्याणकारी कहेंगे, सच्चा कहेंगे या झूठा कहेंगे?
सच्चा।
तो इस दुनिया में 100% सत्यम और 100% शिवम माने कल्याणकारी और 100% सुंदर, जो एक मुकर रथ में वो ऊपर वाला आकर के प्रत्यक्ष होता है। ये आंखें किसको देखना चाहती है? कुरूप को देखना चाहती है या रूप को देखना चाहती है? आंखें जो है वो किस चीज की लोभी है? रूप की लोभी है ना। लेकिन इस संसार में सबसे ज्यादा रूपवान, सबसे ज्यादा सुंदर भगवान ही बनकर के संसार में आता है। पहले बुद्ध रूप में आता है तो उतना सुंदर नहीं दिखाई पड़ेगा, साधारण तक दिखाएगा। जब लास्ट में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है तो जितना भगवान सुंदर दिखाई पड़ेगा, भगवान को देखने के लिए जितना लालायित आंखें रहेंगी उतना और कोई भी दुनिया में लालायित नहीं है। उसको सत्यम वो दुनिया में सबसे जास्ती 100% सच्चा भी है, उससे ज्यादा दुनिया में और कोई कल्याणकारी भी नहीं है और उससे ज्यादा सुंदर भी कोई दुनिया में नहीं होगा, साधक नहीं होगा। जो सुंदर होगा उसको सारी दुनिया देख लो, पेट ही नहीं भरेगा देख, बस देखते ही रहे, देखते ही रहे। आपने 30 मिनट दिखाए
अभी।
देवताएं जो कर्म करते हैं उसका न पाप बनता है और न पुण्य बनता है जो अगले जन्म में फल दे। संगम युग में जो उन्होंने प्रारब्ध बनाई है पुण्य की वो भोगते रहते।
लक्ष्मी को जो नारायण के पांव दबाते हुए दिखाए गए हैं तो उसकी उसको ग्लानी नहीं कहेंगे ना?
ग्लानी है ये बुद्ध रूपी पांव दबाया है या स्थूल पांव दबाए है आज की तरह? उनको उनकी बुद्धि की तकलीफ ज्यादा होती है। बुद्धि के आधार पर जो बच्चे बनते हैं वो यहाँ ज्यादा दुख देते हैं या वो स्थूल दुख देने की बात है? लक्ष्मी को पांव दबाते दिखाया है, जगदम्बा को क्यों नहीं दिखाया? जगदम्बा पांव फोड़ देती है क्या? बुद्ध रूपी पांव दबाए नहीं जाते हैं। कोई अच्छा शुभ का काम करता है, कोई ग्लानी करता है तो बुद्धि को दुख होता है कि नहीं होता है? और कोई ग्लानी नहीं करता है, महिमा करता है, जहां पहुंचेगा वहां महिमा करेगा और महिमा करके अच्छे अच्छे बच्चों को बाप का बच्चा बनाएगा तो सुख होगा या दुख होगा? बाप को सुखी होगा। हाथ उठा दो पता ही नहीं लगता। हाँ
तो शरीर छोड़ेंगे क्या?
तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। ज्ञान में आ गए और ज्ञान में आने का जो मूल तंत्र है स्वयं स्थिति में रहो, आत्मिक स्थिति में रहो, अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझा नहीं और देहवान में आकर के वही दुनिया की परंपराएं निभाते रहे तो दुनिया की परंपराएं निभाई या भगवान ने जो रास्ता बताया उस पर चले? दुनिया की परंपराएं निभाएंगे भगवान मर जाओ। लौकिक में भी बच्चे होते हैं, कोई बात मानता है कोई नहीं मानता। न मानने वाले बच्चे के दिल से निकलती है बाप के ऐसे तो मुआ भरा मर जाना तो अच्छा होता। तो शरीर छोड़ना पड़ेगा।
बाबा कहते धन मन धन समय संपर्क सब स्वाहा करना है। तो धन मन धन तो अपने हाथ में है लेकिन संबंधी संपर्कित तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। संबंधी संपर्कित तो दूर दूर भक्ते सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। संबंधी के लिए संपर्कित तो बिल्कुल
जो ईश्वरीय सेवा में लग जाएगा उसके संबंधी संपर्कित दूर दूर भागते हैं या जो ईश्वरीय सेवा में नहीं लगता है संबंधियों और संपर्कियों की सेवा में लगा रहता है उसे दूर दूर भागते हैं।
जो ईश्वरीय सेवा में लगा
रहता है तो वो तो अच्छा ही हुआ ना फिर, इससे साबित हो गया कि उसने अपने संपर्कियों को संबंधियों को लगा दिया। लगा दिया तभी तो वो दूर दूर भाग रहे हैं। संपर्कियों की और संबंधियों की जो भी ताकत है उनको सुनाया है तभी तो वो दूर दूर भाग रहे हैं कि बिना सुनाए दूर दूर भाग रहे हैं? उनको सुनाया है इसका मतलब संबंधियों और संपर्कियों की ताकत को उसने लगा दिया। नहीं समझ में आया?
बाबा गीता पाठशालाओं में और मिनी मधुबन में जो संधि और कुर्सी अलग की जाती है बाबा के लिए तो उसको भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे ना?
जो कुर्सी होती है कोई ऑफिस होता है तो जो है ऑफिस का मुखिया होता है उसके लिए कुर्सी अलग नहीं होती है? यहाँ अलग अलग कुर्सी है तो खराब क्या बात है?
प्रैक्टिकल में है तभी रखते हैं।
प्रैक्टिकल में है तो रखेंगे, नहीं है मरमरा गया तो रखने का कोई मतलब ही नहीं।
आपके अग्निश्री जड़ो संगम के बाद शिव की आत्मा तो जड़ो बनती है क्या? संगम के बाद सतयुग में शिव की आत्मा जड़ो देंगे?
सतयुग में शिव होता है क्या? शिव नहीं होता लेकिन शिव इस सृष्टि पर आकर के आप समान कोई को बना के जाता है या नहीं बना के जाता है? आप समान बना के जाता है, तब तो बच्चों को कहता है आप समान बनाओ, नहीं तो क्यों कहेगा? जो काम खुद न कर सके वो दूसरों से क्यों कराएगा? तो आप समान बनाकर जाता है, जो आप समान बनता है उसका चित्र सत्युग के आज से लेकर के अंतिम जन्म तक त्रेता तक रखा जाता है। सत्युग त्रेता में चित्रकारी होती थी क्या? ऐसे नहीं जो आज चित्रकारी नहीं होती थी, और वो चित्र बनाए जाते थे राजा रानी के, महाराजा महारानी के, वो चित्र ही द्वापर युग में रह गए और बाकी सब लोप हो गया। और इसीलिए बाबा ने बोला है इस शक्ति पर सदा कायम तो कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। कैसे? जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसको बाबा कहा जाता है, साकार निराकार का मेल बाबा कहा जाता है, वो इस शक्ति पर कायम रहता है, सदा कायम है। और कोई मनुष्य आत्मा कुछ न कुछ है, कायम नहीं रहती, लेकिन वो सदा कायम रहता है। और
परम धाम में आत्मा शिव सुप्रीम सर परम धाम में अंतर्यामी कैसे है?
अंतर और बाहर, ये बात इस दुनिया की है या बाहर की है? इस दुनिया की बात है, ऊंच और नीच इस दुनिया की बात है या परम धाम की बात है?
परम धाम में शिव रहने के बाद जड़ जड़ तो है,
जड़ तब कहा जाता है जब पांच तत्वों का पुतला सिर्फ पुतला रह जाए, उसमें आत्मा न हो, तब कहेंगे जड़। परम धाम में पुतला होता है क्या? होता ही नहीं, वहां की तो बात ही नहीं है। न वहां वड़जत्व की बात है, न चैतन्य की। इतना है कि आत्मा में जो संस्कार भरा हुआ है पार्ट बजाने का, जिस समय जो पार्ट नुद गया वो उसी समय आकर के पार्ट बजाएगा। सुप्रीम सोल का पार्ट नुदा हुआ है, कब आके पार्ट बजाएगा? जब जब संगम योग होगा तब आकर पार्ट बजाएगा, क्योंकि पाप और पुण्य का लेखा जोखा उसका बनता ही। उनका पाप बनता है त्रेसठ जन्मों में, लेकिन संगम युग में आकर के वो इतना याद करते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि उनका किया हुआ पाप सब बस हो जाता है।
सन्यासी लोग एक तरफ कहते नारी नर कगा है, और दूसरी तरफ कहते गंगापति बाण है।
तो गंगा गंगा नारी के रूप में उनके सामने है, पानी को गंगा मानते हैं। और
बाबा मेरा बाबा बोले आपकी भंगी भी नहीं होंगे और नौकर चाकर भी नहीं होंगे, लेकिन दास दास और चांगल चांगल
वो यहाँ के संगम में स्वर्ग की बात बताई है, सत्युग की बात नहीं है, वहां सब एक जैसे होते हैं। इसलिए सत्युग में लक्ष्मी नारायण को गद्दी पर बैठा हुआ दिखाया गया है, क्या दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। राजाई तो वहां की जाती है, शासन वहां किया जाता है जहां अनुशासनहीन लोग होते हैं। सत्युग में तो सब सोलह कला संपूर्ण थे, कोई अनुशासन ही नहीं था, तो कौन किसके ऊपर राज्य करेगा?
यहाँ कैसे चांदर चांदर के उदार बसती है?
यहाँ आप देखा ना आगे आगे कैसा होता है। जैसे राम सीता के राजगद्दी वाले चित्र में दिखाया है, क्या दिखाया है? तो चारों राम के भाई एक बाप के बच्चे हैं, फिर कोई पांव धो रहा है, कोई छत्तर चला छत्तर लिए खड़ा है, कोई पंखा जला रहा है, ये दास दासी का कर्म करते हुए क्यों दिखाया गया? कहां की यादगार? संगम की यादगार है। अभी रिजल्ट निकला नहीं है, रिजल्ट निकलेगा और सब क्लियर हो जाए। और
सेवा करने वाले बच्चों में ब्रह्म की सब प्रवेश करके सेवा करती है या शिव की सेवा करते हो? ब्रह्म की सब प्रवेश करती है या शिव की सेवा?
सेवा जो है वो सतो प्रधान आत्मा करेगी या तमो प्रधान आत्मा करेगी? कौन करेगा? सतो प्रधान आत्मा ईश्वरीय सेवा करेगी और तमो प्रधान आत्मा आसुरी सेवा करेगी। तो बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते हैं, कराते हैं। बच्चे तो तमो प्रधान बने पड़े हैं, लेकिन हाँ इतना है कि बच्चे हिम्मत कर सकते हैं सेवा करने की। हिम्मत करते हैं तो हिम्मतें बच्चे मदद बाप की मिल जाती है, दादा साथ में सहयोगी बन जाता है। और
आध्यात्मिक विद्यालय किस क्रम से खुले दिल्ली के बाद? आध्यात्मिक विद्यालय मिनी मधुबन
हाँ।
किस क्रम से खुले है?
क्या
इस क्रम से खुले?
हाँ। ये तो कोई खास बात नहीं,
फिर भी
है?
खास बात नहीं है, फिर भी किस दिल्ली के बाद कौन से निकले मिनी मधुबन?
दिल्ली के बाद कलकत्ता। हाँ
बाद में
तो लिस्ट निकाली जाएगी, सब निकल आएंगे, उससे क्या कनेक्शन क्या है उसका? और वो तो सैकड़ों की तादाद में खुलते जाएंगे, हजारों की तादाद में खुलते जाएंगे।
और आगे चलकर बाबा में मधुबन के बाहर नहीं जाएंगे तो अभी एक बार भी गीता पाठशाला बदल नहीं जाएंगे
हा?
एक बार भी गीता पाठशाला।
क्या बाबा ने बोला नहीं गीता पाठशाला का नक्शा ऐसा बनाओ जैसे मधुबन? ऐसे लोग नहीं है जो गीता पाठशाला का नक्शा मधुबन की तरह बनाने में लगे हुए हो? फिर क्या बोला?
बाबा चित्रों से नॉलेज मिलती है, मुख्य नॉलेज है बाप को पहचानने की और अपने को पहचानने की। तो कोसे चित्र की और बाप ने इशारा किया, कोसे चित्र के बारे में बाबा ने कहा है?
एक होते हैं जड़ चित्र, जड़ चित्र पे बच्चों को समझाया जाता है, और एक होते हैं चैतन्य चित्र, चैतन्य चित्रों से समझदार लोग ऐसे ही बिना समझाए समझ जाएंगे। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आए तो उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने जल्दी पहचाना ना, किस आधार पर पहचान लिया? देर भी देर तादाद में पहचानने वाले निकल आए, किस आधार पर पहचाना? उनकी दृष्टि के आधार पर, उनकी वृत्ति के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, सात्विक व्यवहार के आधार पर उनको पहचान लिया। तो ये सब चैतन्य करेगा या जड़ चित्र करेगा? चैतन्य करेगा।
बाबा नारद मुनि का पाठ कौन
सी
धर्म की आत्मा
पर? सब धर्म में नारद मुनि है नंबर वन। नार द नार माने ज्ञान, द माने देने वाला, जो ज्ञान जल देता है दूसरों को, कहता है चलो वैकुंठ चलो वैकुंठ, हड़ताल बजाता रहता है लेकिन खुद नरक की दुनिया में सैर करता रहता है। दूसरों को कहता है चलो वैकुंठ, तो पहले क्या करना चाहिए? पहले खुद स्वर्गवासी बनना चाहिए ना। स्वर्गवासी बनना अर्थात स्वस्थिति में स्थित हो जाना। तो हम सब क्या है? हम सब नारद ही है ना, एक नारद की बात हो रही है, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं। आत्म की स्थिति में रहो, आत्म की स्थिति में रहो, और खुद आत्म की स्थिति में सदैव रहते हैं नहीं रहते, तो नारद हुए ना।